मदीसू के प्यारे पंजाब भाई और बहनों, परमेश्वर से कृपा से दोबारा हमारे संघ में शामिल होने के लिए, आपके बीच में परमेश्वर की सच्चाई को बताने के लिए परमेश्वर एक और मौका मेरे को दे दिया है। इसलिए ये बात के लिए पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। दक्षिण भारत में और हर एक जगह में जहाँ जहाँ प्रभु के भक्तों हैं, जहाँ जहाँ मैं आपके बारे में बताएं, वो सब अपने प्यार भेज दिया है। सचमुच दक्षिण भारत में ज्यादातर भक्त है, यहाँ तो कम है, लेकिन जब वो लोग सुनते हैं आपके बारे में उनके मुंह पे बड़ा मुस्कान आ जाता है, क्योंकि वो भारत में दक्षिण कोने में है और आप उत्तरी कोने में हैं, और इतने फासला होने भी उसको जानते हैं कि जो आत्मा उनके अंदर है वो आत्मा भी आपके अंदर है। तो वो सब अपने प्रेम भेज दिया है आप सबके लिए। आप चाहे तो आपका प्रेम मैं लेके जाऊं और उनसे मैं बताऊंगा। तो मैं अफ्रीका भी गया, एक डेढ़ महीने अफ्रीका में थे, केन्या देश, साउथ अफ्रीका देश, कैमरून देश और नाइजीरिया देश, हर जगह में वहां भी जहाँ भक्तों हैं अफ्रीका भक्तों, वो लोग वो सारे भाई और बहनों भी अपने प्रेम भेज दिया है। तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ रहा है। यहाँ एक वहाँ एक, यहाँ तो नहीं है भीड़, ये तो भीड़ का बुलावा नहीं है, ये राजाओं का बुलावा। 1,47,000 राजाओं, राजा तो ज्यादा नहीं रहेगा एक एक जगह एक एक मोहल्ला में। तो ये जब हम कंपी हो के जा रहा है तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है, हम तो जानते हैं ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि ये बुलावा ऐसा है कि अपने आप इनकार करना है बहुत मुश्किल बात है, अपने आप पूरे से पूरा इनकार, हाँ पूरे। इसलिए ये मार्ग का नाम है सकेत मार्ग, इतना सकेत है, अगर कुछ रहते हैं अंदर घुस नहीं पाएंगे। जब अपने आप बिल्कुल इनकार करते हैं, हम शून्य बन जाता है, तो हम घुस रहे सकेत मार्ग। ये है सकेत मार्ग, जो राजाओं बनने का मार्ग है, जो प्रभु यीशु के चरणों पीछे करने का मार्ग है। क्या पता हम सब पापी हैं, परमेश्वर से चुन लिया है, हम तो वैसे ही इस दुनिया के जैसे लोग थे ना, हम तो क्या इतना बड़ा बुद्धा थे, हम इतना बड़ा ज्ञान था क्या, इतना सारा सच्चाई को समझने के लिए नहीं, परमेश्वर ही हमारे में कुछ अधिका और हमारे को बुलाया और हमारे को उनका पवित्र आत्मा दे दिया, हमारा समझदारी का आम के समझदारी का कान खोल के ये अचंभा वाला सच्चाई हमारे को बता रहा है। और जब ये सच्चाई दूसरे को बताता है उनको, उसको आश्चर्य हो रहा है, ये क्या बात है, ये कभी पहला नहीं सुना ये सारे बात, ये तुम बोल रहे, ये हम नहीं बोल रहे, ये वचन बोल रहा है, हम शून्य, वचन सब कुछ, सिर्फ वचन बताने के लिए हम आए हैं इधर, अपने बारे बताने के लिए हम आए नहीं, अपने बारे बताने से क्या फायदा, हो रही है हम प्रभु और प्रभु के बोले हुए वचन और हमारा पिता परमेश्वर से बनाया हुआ योजना वो बताने के लिए आए। और इसलिए कि वचन में यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा है, समझने के लिए मुश्किल है, किनके भाषा है वो तो समझाना है बताना है। तो आज जैसे भगत ने बोला, आज हम देखने वाला जो पाठ है 30वां पाठ है, कटाई की बात है, हम परमेश्वर के बारे पढ़ता है कटाई के बारे में। यहाँ तो पंजाब तो खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं, तो कटाई तो हम जानते हैं क्या है, जब ये बात तो हम शहर में बोलते हैं तो वो लोगों के लिए कटाई को ऐसा आदत नहीं है, लेकिन बाइबल में कटाई है, वचन में पढ़ेंगे मत्ती 13वां अध्याय 39वां वचन, मत्ती 13वां अध्याय 39वां वचन कटाई के बारे में वचन में पढ़ते हैं। मत्ती 13:39 देखो तो क्या बोला, हिंदी में क्या बोलता है, कटवी युग का अंत है ना,
हिंदी का बाइबल है कितने पास? पढ़ लो। हाँ, कटनी जगत का अंत है। तो देखो, कटनी जगत का अंत है। एक थोड़ा और बाइबल में कटनी युग का अंत है। हम तो जान चुके हैं कि जगत और युग का मतलब क्या है। परमेश्वर योजना बना रखा है सारा दुनिया के लिए, और उसके लिए समय चाहिए। और उस समय के बंटवारा में तीन बड़ा बड़ा बंटवारा है, जिसके नाम होता है दुनिया। पहला दुनिया, दूसरा दुनिया और तीसरा दुनिया। हम अभी जो रहते हैं में, वो दूसरा दुनिया के अंत में। एक पहला दुनिया खत्म हुआ बाढ़ में, उसके बाद शुरू हुआ दोबारा दुनिया, भर गया दोबारा दुनिया, और ये दुनिया अभी दूसरा दुनिया अंत के लिए जा रहा है, और एक तीसरा दुनिया शुरू होने वाला है जिसका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो गर्मी का रहने वाला दुनिया है, तीसरा दुनिया। तो अभी हम देखते हैं दुनिया युग, इसका मतलब क्या है। यहाँ तो जब ऐसा हम पढ़ते हैं यहाँ युग युग के अंत है, कटनी, इसका मतलब क्या है। हम जानते हैं यहाँ परमेश्वर हमारे को एक बात बता रहा है। ऐसा नहीं है कि बाइबल में खेती बाड़ी है, लेकिन परमेश्वर खेती बाड़ी के उदाहरण लेके हमारे को समझा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग काम करते वक्त खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी से सीख जाए कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है। परमेश्वर भी काम कर रहा है ना, तो परमेश्वर के काम समझने के लिए हम खेती बाड़ी के जो चिन्ह के भाषा में आज समझेंगे। तो बोलता है युग या जगत के अंत कटनी है। कटनी आपको जानता है, अगर आपको खेती बाड़ी कर रहा है, पहला चाहिए खेत। उसके बाद उस खेत में जब आप बीज बोने को जाते हैं, पहला उस खेत को जोतना है, हल में जोतना है। बिल्कुल जोतने के बाद उसके बाद बीज डालते हैं। अगर जमीन नहीं जोतते हैं तो बीज डालते अंदर नहीं जाएगा। तो जब हल में जोतते हैं तो थोड़ा मुलायम बन जाता है मिट्टी। तो मुलायम मिट्टी में अगर आप बीज डालते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो दूसरा बात, दूसरा काम है हल जोतना, और तीसरा बीज बोना। और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ उस बीज से उभर के आता है छोटे छोटे पौधे, और उस पौधे को उभरने के लिए पानी है और सूर्य चाहिए, और समय के साथ साथ जाते जाते वो पौधे बड़े होके फल देगा, और वो फल काटने का जो काम है वो कहता है कटनी कटाई। वो अंतिम काम है, वो सारे इतने सारे महीने के काम के बाद मिलता है फल। कितना फल, ये सारे काम के लिए कितना फल। तो परमेश्वर ये उदाहरण ले रहा है, कटाई के उदाहरण ले रहा है, खेती बाड़ी का उदाहरण ले रहा है, ताकि हमको समझाए कि परमेश्वर भी इस दुनिया में काम कर रहा है। परमेश्वर का केस क्या है, क्योंकि ये आपको जानता है खेती बाड़ी जो करते हैं पहला चाहिए केस। तो परमेश्वर का केस क्या है, वचन में पढ़ेंगे मत्ती 13वां अध्याय 38वां वचन। मत्ती 13:38 तो खेत संसार है। तो ये सारा दुनिया और सारे दुनिया वाले परमेश्वर का खेत है, परमेश्वर का खेत है। और जो काम परमेश्वर कर रहा है इस खेत के अंदर परमेश्वर कर रहा है। लेकिन एक बात आप समझना है, जिनके पास खेत है ये जरूरी नहीं है कि वो सारा खेत में काम कर रहा है। उसके पास भी अगर वो उस कोने में काम कर रहा है, या इस कोने में काम कर रहा है, या थोड़े सब छोड़ के बीच में ही काम कर रहा है, वो खेत वाले का मर्जी है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी है कि वो सारा खेत में काम करना है, उसका मर्जी है। उसी तरह परमेश्वर भी जब अभी उनके काम कर रहा है, तब दुनिया उनका खेत है, परमेश्वर भी एक आया सारा दुनिया में काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने मर्जी से खेत में काम कर रहा है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में इस केस की बात करते हुए तीन कटाई है, तीन कटाई है। तो तीन कटाई का मतलब है तीन युग में परमेश्वर काम कर रहा है, तीन युग में, क्योंकि युग के अंत कटाई है। तो तीन कटाई है और तीन युग में परमेश्वर कर रहा है। आप तो जानते हैं परमेश्वर के वचन में चिन्ह के बात ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि बात छिप जाए। परमेश्वर अभी इस कटाई के बारे में, तीन कटाई है, तीन युग में कटाई है, और इस तीन युग में कटाई के समय में चिन्ह जो इस्तेमाल करता है, पहला कटाई यहूदी युग का कटाई, मतलब हमारे युग से पहले, हम तो सुसमाचारी हैं, तो यहूदी युग की कटाई में बंटवारा था गेहूं और भूसा, ये बात को हम देखेंगे बाद में वचन में। दूसरा कटाई गेहूं और जंगली बूटी, जो अभी हमारे समय में चल रहा है सुसमाचार युग के, अभी बंटवारा है गेहूं और जंगली बूटी। और तीसरा जो आने वाले हजार साल में जो होने वाला कटाई है वो है बकरे और भेड़। तो ये तीन कटाई हम पढ़ेंगे। आज समझ जाएंगे कि परमेश्वर के योजना में परमेश्वर क्या काम करते आ रहा है, क्या काम कर रहा है और क्या काम करने वाला है। तीन कटाई, आज एक कटाई हो चुका है, दूसरा कटाई चल रहा है, तीसरा कटाई आगे में। तो ये तीन कटाई आज हम देख लेंगे, शुरू करेंगे। पहला कटाई जो हो चुका कटाई है, वो भी युग में जो चला कटाई, देखिए नोट्स में, अगर हमारा दुनिया गोल है तो एक केस है, तो यहूदी युग में सिर्फ इस्राएल में परमेश्वर काम किया, इतना छोटा सा देश, इतना बड़ा दुनिया में, इतना बड़ा केस में, एक छोटे से जगह में परमेश्वर फसल डाला, परमेश्वर काम किया, परमेश्वर कटाई किया। पहला कटाई यहूदी युग में हुआ कटाई, इस कटाई के बारे में अभी वचन में पढ़ेंगे। मत्ती तीसरा अध्याय 11 और 12 वचन, मत्ती तीसरा अध्याय 11 और 12 वचन।
मैं पानी से तुम्हें मन से आपका बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आपको बपतिस्मा दूंगा।
और आगे बढ़ो,
उसका सुख उसके हाथ में है।
उसका क्या उसके हाथ में है? सुख होता है, सुख, उसके सुख हाथ में है,
और अपना कल्याण अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में कटा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बजरे की नहीं।
तो ये वचन में हम पढ़ता है यूहन्ना बपतिस्मा, यूहन्ना बोले हुए बातें यहाँ बोलता है कि प्रभु के हाथ में सूप है और वो बंटवारा करेगा गेहूं और भूसा। गेहूं तो इकट्ठा करेंगे और भूसा तो जलाएंगे। तो ये सब आपको जानता है, ये सब चिन्ह के बारे में। तो ये बात अभी हम समझना है क्या बात हो रहा है। तो इसको समझने के लिए अभी हम देख लेंगे अनेक वचन जहां से ये बात हम मालूम करेंगे। आपको पहला समझना है कि ये यहूदी युग का कटाई, तो यह यहूदी युग की कटाई सिर्फ इसराइल देश के बीच में हुआ। तो इसराइली लोग दो किस्म के थे, एक इसराइली लोग गेहूं जैसा और दूसरा इसराइली लोग भूसा जैसा। अभी गेहूं और भूसा का फर्क क्या है आप तो अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप हाथ में गेहूं का दाने लेते हैं तो ऐसे अगर आप हाथ में और उंगली में डालते हैं आप देखेंगे थोड़े थोड़े दाने जो है अंदर खाली है, उसको भूसा कहते हैं। सिर्फ चमड़ी है, देखने में गेहूं है, लेकिन यहां छूया तो अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं, अंदर खाली। थोड़ा दाने अंदर भी है बाहर भी है, बाहर से देखने तक सभी तो गेहूं के दाने जैसे दिखता है, लेकिन थोड़े दाने अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर गेहूं ही नहीं है, यह है भूसा, यह है भूसा। तो यहां प्रभु चिन्ह के बादशाह से, चिन्ह देते बता रहा है, देखने में सब इसराइली है, देखने में सब इसराइली है, अपने चाल चलन अपने आदत सब इसराइली है, लेकिन असली इसराइली जो दिल से इसराइली है वो है गेहूं। और नकली इसराइली जो दिल से इसराइली नहीं है
वो है मूसा।
अभी दिल से इसराइली बनने का मतलब क्या है? मतलब ये है जो जो परमेश्वर के वचन सुन लिया है, जो जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं सुन लिया है, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, वो है असली इसराइली। और नकली इसराइली वो है जो वचन सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, बस नाम पे इसराइली। इसराइली जैसे छाल छलन कपड़ा वकड़ा सारे आदतें सब इसराइली जैसे शालोम शालोम ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर दिल में विश्वास नहीं है। वो क्या बोलते हैं, इंतजार कर रहे हैं आने वाला मसीहा आएगा, परमेश्वर बोला मसीहा भेजेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं उन मसीहा के लिए। ऐसा स्थिति नहीं था, ज्यादातर इसराइली में ऐसा स्थिति नहीं था, तो वो सब दूसरे हैं। लेकिन असली इसराइली का एक उदाहरण प्रभु ही दिया, नथानियल के बारे में क्या साक्षी देता है, ये असली इसराइल है। मतलब ये गेहूं है। वचन में पढ़ लो, यूहन्ना पहला अध्याय 47वां वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 47वां वचन, यूहन्ना पहला 47। तो जब कभी बोलते हैं देखो सच्चा पंजाबी, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे नकली पंजाबी है कि नहीं, यही मतलब है। तो जब बोला सही और सच्चा इसराइली, इसका मतलब है अनेक नकली इसराइलियों के बीच में ये तो सच्चा इसराइली है, ये तो सच्चा इसराइली है। तो ये गेहूं का मतलब है सच्चा इसराइली, दिल से इसराइल, बाहर से भी इसराइल। लेकिन बहुत सारे नकली इसराइली थे, और सबसे दुख की बात क्या थे, जो धर्म के शिक्षा देने वाले थे ज्यादातर नकली इसराइली थे। जैसे आजकल भी जो धर्म का शिक्षा देता है वो नकली मसीह है। सच्चा मसीह वो है जो दिल से जोश रखता है परमेश्वर के वचन के लिए। जैसे जैसे यिर्मयाह बोलता है तो सुनते सुनते आज की कैसे है हमारे अंदर, वो है सच्चा सच्चा मसीह। मसीह के मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर जोश डालता है, वही परमेश्वर के वचन के लिए सुनने के लिए इंतजार करता है, परमेश्वर के वचन सुनते सुनते बहुत खुश हो जाता है। तो यहां देखता है कि ये नकली इसराइली और असली सच्चा इसराइली, तो गेहूं और भूसा। तो अभी आप समझ लिया है कि गेहूं क्या है और भूसा क्या है। गेहूं तो सच्चा इसराइली, बाहर भी इसराइली अंदर भी इसराइली, लेकिन भूसा बाहर में इसराइली लेकिन अंदर में खाली कुछ नहीं है, दिल में कुछ आस नहीं है, कुछ इंतजारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सात केस इसराइल का केस। तो आप तो जानते हैं परमेश्वर जब इसराइल में काम किया तो पहला उसको चाहिए था केस था इसराइल। लेकिन केस में जब काम शुरू करते हैं, बीज बोने से पहले क्या काम करना होता है? हल में जोतना है। हल जोतने का काम मतलब क्या है? अब देखो आप तो जानते हैं हल कैसा है, बहुत तेज है, चाकू की जैसा, और वो चलाते चलाते क्या करता है, जमीन काटते हैं, टुकड़े करते हैं जमीन। जमीन कैसा बन जाता है? घट के और सख्त के रूप से बन जाता है मुलायम। और मुलायम जमीन में अभी अगर आप बीज डाले तो ऐसे ही अंदर चले जाते। तो इसका मतलब क्या है, हल जोतने का मतलब क्या है? दिलों को तैयार करना, मनुष्य के दिलों को तैयार करना। अभी परमेश्वर ने
इसराइली के युग में इसराइल के बीच में जब हल जोतने का काम किया, वो क्या काम था? वो काम था जब इसराइल मिस्र के देश में थे, जब दासी बन गए थे उधर, जब मिस्र के लोग के नीचे, इसराइल के लोग के नीचे, के अधिकार के नीचे थे, बहुत दुख उठा रहे थे, बहुत दुख, इतने सारे दुख उठा रहे थे कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। वो है हल जोतने का काम, कि उसके दिल बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल मुलायम। उसके बाद परमेश्वर उन लोगों को सारे इकट्ठा होके, कितने लोग, हाँ कितने लोग है, 25 लाख लोग, 6 लाख मर्द, एक और 5 लाख औरत और बच्चे, 15 लाख, एक एक खानदान को 3-3, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं बोला मैंने, तो कुल मिला के कितने, 25 लाख लोग एक आदमी मूसा ने बाहर लेके गया। सोच लो वो दृश्य कैसे हुआ। तो ये हल जोतने के काम के बाद परमेश्वर उनको बाहर लाया, बाहर ला के उसके बाद क्या किया, परमेश्वर ने उनके वचन दिया भविष्यताओं के जरिए से, ये यशाया से शुरू होके मल्किया तक, सारे पुराना नियम, सारे वचन, किसके लिए, किसके कामों के लिए, इसराइली के कामों के लिए। सुन लो, प्रभु परमेश्वर यहोवे ये कहता है, वो कहता है, ये कहता है, वो कहता है, ये सुनते रहा, सुनते रहा। ये था बीज, परमेश्वर के वचन, ये था बीज उस यहूदी के युग में। उसके बाद यहूदी के युग को चलते चलते क्या हुआ, समय गया, वो बीज से छोटे छोटे पौधे बाहर आ गया, और चाहिए था और पानी, और चाहिए था सूर्य। पानी क्या है, परमेश्वर का और भी वचन, मतलब सलाह का वचन, चेतावनी का वचन, क्या बोलता है, आशीर्वाद के वचन, ये सब पानी, हर दिन पानी डालना है, हर दिन पानी डालना है। लेकिन साथ साथ सूर्य भी चाहिए। सूर्य का मतलब क्या है, परमेश्वर का रक्षा, परमेश्वर का रक्षा, परमेश्वर का आशीर्वाद। क्या मिले इसराइल के, हर एक युद्ध से, हर एक जंग से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को बचाया, बचाया, रक्षा किया। यह है सूर्य, सूर्य का जो असर और पानी का जो असर, दोनों परमेश्वर दिया। और चलते 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 अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए फल, फसल काटने का समय आना है। यही तो प्रभु यीशु ने बोला, आगे बोला, देख खेतों सब पक्के हैं। लोग सोच रहा था प्रभु यीशु खेती बाड़ी की बात कर रहा था, खेती बाड़ी की नहीं, इसराइल लोग स्थिति के बारे में प्रभु यीशु बोल रहा था। वचन में पढ़ लो, मत्ती 3:12। एक और वचन जो है ना, तो बोलता है खेत के, खेत देखो सभी तो पक्के हैं। किधर है वो वचन, ऊपर देखो आप, नजर में देखो, सारा खेत पक्के हैं काटने के लिए। आप जानते हैं ना वो वचन, तो वो वचन जब प्रभु ने बोला, वो वचन किसके लिए बोल रहे थे, खेती बाड़ी के नहीं है, इसराइल के बारे में बोल रहे थे, कि परमेश्वर जो इतने साल काम किया था इसराइल के अंदर, खेत में हल जोतना, खेत में बीज बोना, खेत में पानी देना, खेत में सूर्य देना, समय देना, उसके बाद में सब भरा हो गया। अभी क्या परमेश्वर इंतजार कर रहा था? फल, फल इंतजार कर रहा था। तो यही बात तो प्रभु यीशु बोला, उसके आगमन में, पहले आगमन में वो तक सर उठा के देख, सभी केस पक्के हैं काटने के लिए। इसका मतलब है यहूदी युग के कटाई के समय आए थे, तो यहूदी युग के कटाई के समय आते वक्त देखते हैं कि बंटवारा करना चाहिए था दो दो, क्या बोलते हैं, दो झुंड, दो झुंड, एक तो गेहूं झुंड, एक तो भूसा झुंड, एक तो इकट्ठा करना था, दूसरा तो जलाना था। तो ये है वो बात, तो हम देखते हैं। तो सूप उनके हाथ में थे, सूप आपको जानते हैं, सूप मतलब अगर आप पूरा गेहूं के दाने डालते हैं और यूज करते हैं तो क्या करता है, क्या होता है, हवा में भूसा उड़ जाता है और बच्चे रहते हैं गेहूं, बच्चे रहते हैं गेहूं के दाने। तो मतलब क्या है ये, मतलब जो होता है, जो हम देखते हैं कि सूप में ऐसा 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 करते वक्त जो वो बंटवारा होता है गेहूं और भूसा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो हम देखते हैं हवा, हवा में गेहूं के दाने बैठते हैं लेकिन हवा में भूसे उड़ जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये सूप जो था, जो 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 प्रभु के हाथ में था, वो सूप क्या था, वो सूप था प्रभु यीशु के बोले हुए वचन, बोले हुए शिक्षा। ये शिक्षा गेहूं वाले यहूदियों को कैसे लगा, उनके और भी सुनने के लिए उनके सामने बैठा था, लेकिन भूसा वाला यहूदियों के लिए क्या हुआ, ओ नहीं चाहिए ये शिक्षा, ओ ये सब तो बराबर नहीं है, ये तो हमने कभी ना है, ये हमारा परंपरा के मुताबिक नहीं है। तो वो दूर गया, उड़ के गया, इनकार किया प्रभु यीशु, इनकार किया प्रभु यीशु का शिक्षा। तो ये है सूप, सूप का मतलब है प्रभु यीशु की बोले हुए शिक्षा। और वो शिक्षा का असर क्या हुआ, सिर्फ गेहूं बच के बैठा था लेकिन भूसा सब दूर हटाते थे। तो ये है गेहूं और भूसा के द्वारा पहला काम जो हुआ यहूदी के युग में, प्रभु यीशु आया और प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन बताया और परमेश्वर के वचन सुनते 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 लोगों के बीच में ये हुआ असर, ये हुआ असर। तो प्यारे भाई और बहनों, तो ये बात तो यहां हम देख रहे हैं कि पहला कटाई में बंटवारा हुआ गेहूं और तो गेहूं किधर इकट्ठा हुआ, दोबारा पढ़ लो, गेहूं किधर इकट्ठा हुआ, हिंदी में वो शब्द क्या है, मती चिन्ह 12 खेत में, अंग्रेजी में गोदाम में, गोदाम में। तो क्या इकट्ठा, किधर इकट्ठा करेगा गेहूं, गोदाम में, यहां गेहूं का गोदाम में इकट्ठा करने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु जब पहला आया और जब शिक्षा देते किस लिए, ताकि कोई उनका चेले बन जाए, है कि नहीं, क्या बोला, जो कोई मेरा पीछा करने को मन लगता है अपने आप इंकार करो, अपने सलीब उठाओ और मेरा पीछा करो। तो शिक्षा करना था, प्रभु यीशु चेले ढूंढ रहे, चेले कौन उनके चेले बन जाएंगे। तो ये गेहूं था पहला कलिसिया के सदस्यों, पहला सदस्यों जो कलिसिया में आया सब यहूदी था, 12 चेले यहूदी, पहला 3,000 यहूदी। पत्रस के दिन में जब पत्रस ने वाचन किया कितने लोग बपतिस्मा लिया, 3,000 लिए सब यहूदी, उसके बाद 3,000 बढ़ के कितना आता हुआ, 5,000 हुआ। तो ये पहला 5,000 जो 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 स्वीकार किया शिक्षा, जो स्वीकार किया प्रभु यीशु और प्रभु यीशु का चेला बन गया, ये सब यहूदी थे, सब यहूदी थे। ये था वो गेहूं का झुंड, गेहूं का झुंड, बाकी सब बाकी सारा इसराइल इनकार कर गया, सभी भूसा बन गया, सभी भूसा इनकार कर गया। प्रभु प्रभु यीशु का शिक्षा इनकार कर दिया, प्रभु यीशु को ही इनकार कर दिया। मार डालो बोला, सबसे बड़ा खतरनाक डाकू खड़ा कर दिया उधर पीलक, बोला देखो वो बराबर और यहां तुम्हारा राजा, अभी सुन लो किसको मैं रिहा करना किसको अंदर करना। बोलता है बराबर, मतलब इतने पागल हुआ इतने अंधा हुआ कि लोग को पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए असली क्या है गलती क्या है। तो ऐसा स्थिति हुआ तो ये बात तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये बात तो यहाँ अंत में हुआ लोगों के बीच में। तो वचन बोलता है कि गेहूं गोदाम में इकट्ठा करेंगे और भूसा क्या हो जाएगा, भूसा जलाएंगे, भूसा जलाएंगे और वो भी कैसे कैसे जलाएंगे, कैसे आग में जलाएंगे। दोबारा पढ़ लीजिए वचन मत्ती तीसरा अध्याय 12वां वचन।
उसका संतों के हाथ में है अपना कल्याण अच्छी से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो किससे इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा,
भूसी को आग में जलाएगा
जो बुझने की नहीं,
जो जो
बुझने की नहीं,
बुझने की बुझने की नहीं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो बुझ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये पहले बात आपको जानना है, असली बात असली साधारण भाषा में ये तो चिंता भाषा है। तो ये आग जो है आपको जानता है बाइबल में ज्यादातर आग है, आग तो नरक नहीं है, आग तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय आग के समान है। क्योंकि आग में दो चीज होता है, एक तो खत्म हो जाता है चीज, दूसरा तो शुद्ध हो जाता है। सोना चांदी लोहे ऐसा आग में तो क्या हो जाता है और भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन बाकी सारे चीज खत्म हो जाता है नाश हो जाता है। तो परमेश्वर का न्याय का मकसद है दो, एक तो पाप का नाश होना चाहिए, बिल्कुल पाप का नाश होना चाहिए, लेकिन पापी का दिल क्या होना है शुद्ध होना चाहिए। तो यह है परमेश्वर का न्याय का मकसद। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का न्याय का चिन्ह है आग, आग। तो ये आग किस पर आया, भूसा, भूसा कौन है, नकली इसराइली, नकली इसराइलियों के ऊपर अंत में न्याय आया, परमेश्वर के न्याय आया। और ये क्या न्याय था, जो बुझ नहीं पाया, मतलब जो रोक नहीं सका, क्यों, क्योंकि लोग खुद ही बोला परमेश्वर के न्याय हमारे ऊपर आने दे, हमारे बच्चों के ऊपर आने दे। आपको याद है ना पिलात ने बोला प्रभु यीशु को मैं कोई धमकी नहीं दे सकता, मैं हाथ धो रहा हूं, इनका लहू मेरे ऊपर नहीं है। तो वो लोग क्या बोला, परवाह नहीं छोड़ो, उसके लग हमारे ऊपर हो जाए और हमारे पीढ़ियों हमारे बच्चों के ऊपर हो जाए। तो न्याय आया उनके ऊपर, सारा देश सर्वनाश हुआ, सारे इसराइली लोग सारे दुनिया के हर एक कोने में क्या हुआ, क्या बोलता उसको डिस्ट्रीब्यूट, बिखर बिखर गया, बिखर गया और देश खाली हुआ। ये वचन पढ़ता है जकरिया, जकरिया 7वां अध्याय 14वां वचन, जकरिया 7:14। जकरिया 7:14 उसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। ये था न्याय जो परमेश्वर से आया। ये न्याय शुरू हुआ जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने ये बात किया मत्ती में 23वां अध्याय 38वां वचन, मत्ती 23:38। हे जरूसलम जरूसलम बोलता है, मैं कितने बार आपको इकट्ठा करने का सोचा मुर्गी जैसे कुंजियों को इकट्ठे करते हैं, उसी तरीके से मैं आपसे इकट्ठा करने की कोशिश किया, लेकिन आप आने को मन नहीं है। 23, 23, 38
कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुझे अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालों को इकट्ठा कर लूं। प्रस्तुत तुमने न चाहा, देखो तुम हरा कर तुम्हारे लिए उजाड़ हो जाता है।
देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। ये था न्याय के शब्द जो यीशु ने बोला। इसका मतलब है आज से ये यहूदी का युग खत्म। आज से परमेश्वर जो आपके ऊपर बरकत रखा, परमेश्वर जो आपके ऊपर आशीर्वाद रखा, आज से बंद। तो ये न्याय के शब्द यीशु ने बोला। उसके बाद वो अग्नि वो आग आया और वो आग आते ही पूरे पूरे इसराइल के देश राख हो गया, मतलब वो देश ना रहा। तो ये बात आप पढ़ सकता है मत्ती 27वां अध्याय 25वां वचन। ये आग बुझ नहीं पाया, बुझ नहीं पाया मतलब ये रोक नहीं सका, क्योंकि ये लोग ये आग ये न्याय उनके ऊपर लाया, अपने ऊपर लाया। मत्ती 27, 25
सबने उत्तर दिया कि इसका जो हम पर और हमारी सरकार पर हो।
देखो खुद ही बोला खुद ही ढूंढ के आया, ये खाने दो हमारे ऊपर, और न सिर्फ हमारे ऊपर, हमारा संतान मतलब हमारे आने वाले पीढ़ियों में उनके ऊपर भी आने दो। चलो ऐसे ही ये आग भूसा तो सब जलाया, ऐसे खत्म हुआ पहला काम, पहला युग यहूदी के युग, कटाई में गेहूं जो इकट्ठा हुआ, पहला मसीह कौन? इसराइल। आप जानता है इब्राहिम के दिया हुआ वादा के अनुसार हमेशा इस दुनिया में अनेक आशीर्वाद में पहला यहूदी, बाद में यूनानी। तो अभी खत्म हुआ पहला काम, पहला कटाई, दूसरे कटाई में जाएंगे, जिसको हमारे को मतलब है। अभी यहाँ हम बहुत सारे सबक सीखने वाला है हमारे बारे में, और क्या हो रहा हमारे बीच, ये उलझन क्या हो रहा हमारे बीच में। जब हम सच्चाई बोलने के लिए आते हैं, जब हम जय मसीह बोलते हैं, दूसरे जय मसीह बोलने वाले हमसे मुकाबला हो रहा है, क्यों? यहाँ इस कटाई से हम मालूम करेंगे ये बात क्या ऐसा है। मसीह में 13वां अध्याय जी,
यहाँ पर जो ये लोगों ने श्राप अपने ऊपर लिया है, तो जो हमने तो अभी प्रभु को ग्रहण किया है, हमारा तो कुछ वर्ष हुए हैं, तो हम तो प्रभु के लहू के द्वारा निजात वाली है, लेकिन ये जो श्राप इन पर था, क्या प्रभु के बलिदान के द्वारा मुक्त हो गए थे?
वो अलग बात है, मैं तो सिर्फ पहले आगमन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इसराइल को क्या हुआ, और उसके बाद इसराइल से क्या कैसे होगा, और कौन से जरिए से होंगे, वो अलग करते हैं। तो हम तो सिर्फ कटाई, पहला कटाई देख रहे हैं यहूदी की युग। आपका पता है, लेकिन आने वाले क्लास में वो सवाल का जवाब मिलेंगे। अभी दूसरा कटाई, सुसमाचार की युग के कटाई। अभी सारा दुनिया चेत है, लेकिन काम चल रहा है हर एक देश में, जहां जहां मसीह हिस्सा है, जहां क्रिश्चियन हिस्सा है, वहां वहां काम हो रहा है। तो सारा दुनिया में चल रहा है, सारा केंद्र में जा रहा है, लेकिन यहाँ एक जगह, वहां एक जगह ऐसा को फसल परमेश्वर ने रंग डाला है, कौन देख रहा है। तो ये दूसरे कटाई में जो चिन्ह इस्तेमाल किया गया है वो है गेहूं और जंगली बूटी। वचन में पढ़ेंगे मत्ती 13वां अध्याय 30वां वचन, मत्ती 13:30। मत्ती 13वां अध्याय 30वां वचन,
कठिन तक दोनों को एक साथ खाने दो और कठिनी के समय मैं खाने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे गट्ठे में रखा।
देखो एक ही खेत में ऊपर से आ रहा है दो किस्म का पौधे, एक तो गेहूं के पौधे और एक तो जंगली दाने का पौधे। एक तो गेहूं के पौधे और एक तो जंगली दाने का पौधे। अभी अभी आप पहला कटाई आप देख चुके हैं, पहला कटाई के दो छिन गेहूं और भूसा का, तो आप जान चुका है कि गेहूं का मतलब है पहला मसी ही यहूदियों से। अभी यहाँ दूसरे युग में गेहूं दोबारा आता है तो ये गेहूं है, ये है मसी ही यूनानियों से, मसीही यूनानियों से, क्योंकि पहला युग का कटाई मसीही यहूदियों से, लेकिन ये युग में सुसमाचार युग में ये अभी इकट्ठा हो रहा है मसीही यूनानियों से, बराबर अन्य जातियों से। यूनानी का मतलब ग्रीक, तो ये है अन्य जातियों से हो रहा है। तो अभी हम समझ जाएंगे कि ये जो कटाई, ये सुसमाचार युग की कटाई, इसके थोड़े कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे मत्ती 13वां अध्याय वचन 24 से पढ़ के 30 तक पढ़ते आएंगे। मत्ती 13वां अध्याय 24 से शुरू होके 30 तक पढ़ेंगे।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया,
आपको जानता है ना स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य असल में आता है, इसका मतलब है मसीह के बुलाव, मसीह के बुलाव। असली मसीह का बुलावा जो स्वाद स्वर्ग का राज्य बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के योजना के मुताबिक मसीह का जो चुनाव अभी हो रहा है नया आकाश बनने के लिए, यही चुनाव हो रहा है नया आकाश। नया आकाश का मतलब क्या है, जो आत्मिक अधिकार चलाएंगे तीसरे दुनिया में उनके चुनाव हो रहा है। इसलिए मसीह साधारण लोग नहीं है, मसीह राजा बनने के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन आज के दुनिया का राजा नहीं है, जैसे शैतान के रूप में राजा होता है, ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु की नहीं है। तो असली राजा दूसरों का सेवा करते हैं, लेकिन नकली राजा दूसरों से सेवा लेते हैं। यह है फर्क परमेश्वर के और शैतान के। तो यहां देखता है परमेश्वर के राज्य का मतलब है ये सुसमाचार युग, ये चुनाव चल रहा है, ये तलाशी चल रहा है, तो इसके बीच में क्या क्या होगा एक दृष्टांत में यहां प्रभु बता रहे हैं। पढ़िए,
यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका चक्षु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर वृद्ध के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तुमने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे और उसने कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का कारण है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर दें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बनने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे गट्ठे में इकट्ठा करो।
तो ये पूरा दृष्टांत है। पूरा दृष्टांत शुरू होता है स्वर्ग के राज्य एक मनुष्य के समान है जो अच्छे बीज लेके अपने खेत में बोया। तो ये इंसान और ये मनुष्य कौन है? ये प्रभु यीशु, जिनसे शुरू हुआ ये बुलाव। अच्छा बीज लिया, वो बीज क्या है? वो बीज है परमेश्वर के वचन। लूका आत्मा देव 11, लूका 8:11। परमेश्वर का वचन, तो ये बीज परमेश्वर का वचन। ये मनुष्य ने वो बीज लेके अपने खेत में बोया। इसका मतलब है प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन इसराइल में बताया, लेकिन बाहर बताने के लिए अपने 12 चेले को वो काम देता है। जाओ यरूशलेम से शुरू होके दुनिया हर कोने तक जाओ और क्या करो? प्रचार करो, ये वचन का प्रचार करो। तो ये था बीज, असली बीज। लेकिन वचन बोलता है जब पढ़ो वही 24:25। मत्ती 13:24-25।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य और मनुष्य के समान जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया।
लेकिन अगले
पर जब लोग सो रहे थे,
जब लोग सो रहे थे, तो ये लोग सो रहे थे का मतलब क्या है? ये लोग वो है जिन्होंने ये मनुष्य वो अधिकार दिया इस बीज को बोने के लिए, मतलब 12 चेले। 12 चेले जब तक जिंदा था एक भी शत्रु का काम सफल नहीं हुआ। जब तक 12 चेले जिंदा था पहचान रहे थे ये शत्रु का काम हो रहा है और रुकेंगे वो, मतलब उनके पास वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। लेकिन जब लोग सोया, जब 12 चेले मर गए, उसके बाद रास्ता खुला शत्रु अंदर आने के लिए। शत्रु है शैतान। क्या लाया? उनके शिक्षा, जो बीज जो है परमेश्वर के वचन, और शत्रु लाता है एक और बीज, मतलब हम शकल वचनों, हम शकल शिक्षा, लेकिन असली शिक्षा नहीं है, असली शिक्षा नहीं है। और वही खेत में बोते हैं। तो अभी समझ लो, ये दृष्टांत बताता है एक ही खेत में गेहूं भी है और साथ साथ जंगली दाने भी हैं। ये जंगली दाने जो आपको कहते हैं, ये अंग्रेजी में क्या है? TARE, टैर जो टेक्निकल नाम है बियर्डेड डार्कनेस। इसका मतलब है सरल से बताए तो गेहूं का नकल। गेहूं का पौधे जैसे है उसी तरह ये पौधा है। जैसे गेहूं छोड़ता है वो क्या बोलता है? जहां बीज रहना गेहूं का बीज, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ईयर, चीटा। तो ये छोड़ता है ना, कि अंदर क्या मिलता है? वो गेहूं का दाने मिलते हैं ना, तो चीटा भी ये भी छोड़ता है चीटा, लेकिन उसके अंदर क्या है? काला दाना अंदर है। और दूसरे बात क्या है, गेहूं का दाना अगर खा जाते हैं वो दाना है, वो जीवन देता है, लेकिन अगर आप इस जंगली दाने का दाना खाते हैं, वो काले दाना खाते हैं, वो जहर है और तुरंत उल्टियां शुरू हो जाता है, उल्टी शुरू हो जाएगा। और जब हवा बहता है खेत में, गेहूं का खेत पूरा का पूरा झुकेगा। क्यों? क्योंकि गेहूं का जो दाना है वजनदार है, तो इसलिए वो हवा में झुकता है। लेकिन ये जंगली दाने का जो दाना है उसको बहुत हल्का है, वजन ही नहीं है, इसलिए जब हवा बहता है तो वह यू हवा मुकाबला ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इन सब में हमारे लिए सबक, इन सब से हम अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहला बात, शुरू हुआ सुसमाचार युग, शुरू हुआ प्रभु यीशु के सेवा में, शुरू हुआ प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन बोलने शुरू किया, और ये वचन बोलते बोलते अपने 12 चेलों की शिक्षा देके उनको भेज दिया, जाओ यही शिक्षा सभी को बता दो। गया, सभी को बताया और कलीसिया का शुरुआत किया। लेकिन एक और देख रहा था, ये था शत्रु, और शत्रु का योजना भी था, और शत्रु का योजना था कि शत्रु इस काम जो परमेश्वर कर रहा था सुसमाचार युग में, इसको तोड़ना है, इसको उजाड़ना है। तो कैसे उजाड़ेंगे? इन शिक्षा के बीच में, इन 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 काम के बीच में लाएंगे उलझन, लाएंगे उलझन। कैसे उलझन लाएंगे? नकली शिक्षा, नकली शिक्षा लाएगा। तो नकली शिक्षा आएगा करके चेले पौलुस ने चेतावनी दिया। वचन में पढ़ लो, पहला तिमोथियुस 4 पहला वचन, पहला तिमोथियुस 4 पहला वचन, चौथा अध्याय 4:1 पहला तिमोथियुस 4:1-1 पीछे जाएंगे। तो शैतान ने क्या किया? हर एक सच्चाई की शिक्षा के बदले में लाया था नकल, हर एक शिक्षा के बदले में लाया था नकल। अभी 30वां क्लास इधर चल रहा है, आपको देख चुके हैं बहुत सारे नकल। आत्मा, आत्मा का सच्चाई क्या है? मनुष्य के पास आत्मा नहीं है, मनुष्य खुद ही आत्मा है। लेकिन ये नकल का शिक्षा क्या बोलता है? मनुष्य के पास आत्मा है, वो अंदर है, वो मरता नहीं है। मनुष्य मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है, वो चले जाता है, वो चले जाता है, चले जाता है दूर। लेकिन वचन इसने कहता पाप का दंड है मौत, जिस आप पाप करता है वो आत्मा मरता है। देखो ये शिक्षा कैसे है, इस शिक्षा दुनिया सारे मानते हैं, पिक्चरों बनाते हैं, प्यार की किसी कहानी बताता है, मर जाता है एक और उसकी आत्मा खड़ा हो जाता है और उसकी आत्मा पीछे आ जाता है और बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं सारे पिक्चर को, और आगे और एक लड़का लड़की से धमकाते हैं, तुम मेरे को प्रेम नहीं देगा मैं मारूंगा और मेरा आत्मा तुम्हारा पीछे आ ये सब है। लेकिन ये सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं है। असली शिक्षा परमेश्वर का शिक्षा है, मनुष्य खुद ही आत्मा है। परमेश्वर जब आत्मा बना, दो चीजों इस्तेमाल किया, एक तो मिट्टी से बनाया था एक शरीर, लेकिन शरीर में जान नहीं था। जब तक परमेश्वर
खुद ही नहीं साथ नहीं दिया और साथ फूका किधर? मुक्त में, ये नाक में फूका, फूकने के बाद क्या हुआ? वो शरीर जान पे आया। तो शरीर और सांस दोनों मिलके बन जाता है जीवित आत्मा। लेकिन इसलिए कि मौत के दंड है पूरे सारा मनुष्य जाति के ऊपर, एक समय आ जाता है जब ये सांस निकल जाता है तो दोबारा शरीर शरीर ही बन जाता है। इसलिए हम वापस शरीर उसी मिट्टी के दोबारा डालते हैं। तो आत्मा का सच्चाई बहुत सरल है, बहुत साफ है वचन में, लेकिन इसके नकल में आजकल क्या क्या विश्वास कर रहा है। अभी आत्माओं के लिए दिन भी रखा है, नवंबर 2 तारीख जाएंगे सभी संस्थान को और सभी संस्थान के सामने प्रार्थना करेंगे और थोड़े संस्थान के सामने लाएंगे जो पसंद करते थे, क्वार्टर क्वार्टर भी लाएंगे, ले लो तुम तो बहुत पसंद किया क्वार्टर इसकी लाया और तुमको तो बिरयानी पूछा तो अंडा नहीं है लेकिन बिरयानी लाया, देखो ले खाओ। ये सब हो रहा है, सब हो रहा है, जाके देख लो मसीही नाम से लोग से हो रहा है। तो ये नकली शिक्षा, नकली शिक्षा, असली शिक्षा देगा कितने सरल वचन में, लेकिन ये नकली शिक्षा सब लोग मानते हैं क्योंकि आजकल कोई वचन नहीं सुनते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए नरम नहीं है। अगली शिक्षा नरम, हाँ बाइबल में नरक है, नरक नहीं है हमने नहीं बोला, लेकिन नरक क्या है? नरक क्या है? जैसे जैसे एडन के बाद में परमेश्वर बोला जिस दिन तुम इस पेड़ से तुम खाते हो तुम जरूर मर जाओगे, तो पाप जब करते हैं तुम मरेंगे। तो नरक का मतलब है मौत का स्थिति, मरे हुए स्थिति। दो स्थिति है बाइबल में, पहला मौत दूसरे मौत, पहला मौत और दूसरे मौत के बीच में पुनर्स्थान। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सच्चाई सुनने का मौका, कान खोलने के लिए आंख, समझदारी के आंख खोलने के लिए मौका परमेश्वर देगा। यह है नरक का सच्चाई। लेकिन आजकल नरक क्या है पूछते तो एक बड़ा आग जहां जीवित आत्माओं पीड़ा गम में सताते 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 रहते हैं। यह है कृपा दया, कृपा दयालु परमेश्वर ऐसे आग में छोड़ दिया आत्माओं, उनकी चीख उनके कान में नहीं आती, चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो। ये है नकली शिक्षा। हमारे मुसलमान दोस्तों बोलते हैं अल्लाह कृपा दयालु है, लेकिन उसे अल्लाह क्या रखा है? एक आग रखा है। अभी सुनो सभी, अल्लाह किधर डालेगा? उस आग में। चलो अल्लाह ऐसा बोलते तो हम कुछ बोलता नहीं, परवाह नहीं, अल्लाह तो अल्लाह है, लेकिन हमारा बाइबल बोलने वाला भी ऐसा बोले तो ये क्या? ये तो सच नहीं है, ये तो सच्चाई नहीं, ये नकली शिक्षा है। हम तो ये नहीं बोलते कि नरक नहीं है, हम तो बोलते नरक है, लेकिन नरक क्या है हम बताएं? नरक का सच्चा शिक्षा सुन लो। दूसरा तीसरा परमेश्वर, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तीन है, तीन है, एक है ना तीन है? अरे एक से बोलो, तीन है या एक है? ना तीन है, तीन है नहीं एक है, एक है नहीं तीन है, तीन एक, एक तीन, तीन एक, एक ये तो थ्री इन वन है क्या? थ्री इन वन, त्रिनिति, त्रिदेव, त्रिदेव होता है। लेकिन परमेश्वर बहुत साफ तरीके से हमारे को बताता है एक अकरब सच्चा परमेश्वर जो आप हैं और आपके भेजे हुए दूत जो मैं हूं, बताता है ना? इतना साफ, इतना सरल। परमेश्वर एक ही है, पिता परमेश्वर, उसका इकलौता पुत्र एक ही है, उसका जरिया सारी सृष्टि, परमेश्वर उस दरिया के मुताबिक सृष्टि किया। कोई ऐसी सृष्टि नहीं है जो स्वर्ग में या जो धरती में जो उस दरिया के
जरिए से परमेश्वर सृष्टि नहीं किया, लेकिन वो जरिया खुद ही एक सृष्टि है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, उसके बाद परमेश्वर कोई भी सृष्टि अपने हाथों से बनाया नहीं। कितने महिमा हमारा परमेश्वर की। और पवित्र आत्मा वो एक तीसरा बंदा है, बोलते हैं इसलिए कुर्सी भी रखे हुए हैं, एक काली कुर्सी रखेंगे उधर नहीं बैठने, पवित्र आत्मा बैठेगा उधर। क्या बात है, किधर है बच्चा में, किधर है ये सब। पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का शक्ति जो सारे काम करते हैं, जो रखाते हैं, जो बचाते हैं, जो बनाते हैं, जो सारे हुनर देता है। इतना बड़ा आत्मा को क्या नाम देना है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र। ये तो कोई बंदा नहीं है, ये तो परमेश्वर से निकल के आता है शक्ति। लेकिन आज वो सच्चाई किसी के पास नहीं है। तो ऐसा ही हर एक असली शिक्षा के मुकाबले में एक और नकली शिक्षा लाया शत्रु। और आजकल मसीह नाम में दोनों हैं, हम भी मसीह बोलते हैं, वो भी मसीह बोलते हैं। इसका नाम है यूहन्ना मसीह, उसका नाम भी यूहन्ना मसीह। लेकिन सच्चा मसीह कौन है, देखने के लिए मसीह है। दोनों हाथ में पकड़ रहा बाइबल, उसके हाथ में भी बाइबल, उसके हाथ में भी बाइबल, कैसे पहचाने। एक तो गेहूं है, दूसरे तो जंगली दाने हैं। एक तो गेहूं है, एक तो जंगली दाने हैं। ये नकली वचनों, नकली शिक्षाओं वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4-14 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 वचन।
यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और भी सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो।
देखो पौलुस बता रहा है कि ऐसा स्थिति आएगा जब एक दूसरा यीशु होगा, नाम यीशु ही है, नाम यीशु ही है, दूसरा यीशु, चाहा छोटे जगह में बच्चा यीशु, बच्चा यीशु का कलीसिया देना था, बच्चा यीशु इन्फेंट यीशु है कि नहीं, इधर आया है ना बेंगलोर में इन्फेंट यीशु, बच्चा यीशु, बच्चा छोटा नन्ना यीशु, नन्ना यीशु लगाएगा और नन्ना यीशु के पास जाते क्या जो जलाते कुछ मान पूछते तो नन्ना यीशु से आए, तो वहां यीशु बड़ा होते ही नहीं, नन्ना ही रहता। एक और यीशु को दिल में, दिल बाहर ही आ गया, बाहर ही आ गया, कभी से बाहर ही है, ऐसे ही ऐसे तड़प रहा है, तो उसको बोलता है पवित्र हृदय यीशु है, सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस करके नाम था कलीसिया में है। दूसरे क्या बोलता है, प्रभु यीशु जो खुद ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर ही मर गया, परमेश्वर ही मर गया, क्या हाल होगा दुनिया में जब अगर परमेश्वर ही मर जाता तो क्या हाल हो जाएगा दुनिया को, परमेश्वर को कौन जिलाएंगे।
जैसे वो जुमला में कहना आपके शब्द की शब्द ही परमेश्वर थी, जो परमेश्वर ही मर गया
परमेश्वर ही उठेगा। तो ये सब दूसरे यीशु है, दूसरे यीशु है, और दूसरा आत्मा, पवित्र आत्मा, असली पवित्र आत्मा जिनके पास है उसको ज्ञान आएगा, उसको सही तरीके से चलन आएगा, उसको अच्छा स्वभाव गुण आएगा, उसके जिंदगी में बदली आएगा, वो है असली पवित्र आत्मा। लेकिन आजकल का पवित्र आत्मा क्या है, जब आ जाता है एक तो ज्यादा हंसेंगे या ज्यादा चिल्लाएंगे या ज्यादा रोएंगे, और मैं सुना है आजकल बकेट बकेट लेके उल्टी उल्टी करेंगे, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी होता है। कैसे पवित्र आत्मा है, ये दूसरा आत्मा है, दूसरा आत्मा बोलता है ये पवित्र बात हो रहा है कि लख रहा है खाम रहा है ऐसा बोलता है मैं आपको बोलता आत्मा से भरे हुए कैसा है कैसा है। देखो आजकल 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 हो रहा है ये नकली उपदेश नकली जो हो रहा है। और तीसरा एक ना एक नकली सुसमाचार आजकल सुसमाचार बोलता है कि हम कल्याण में जाने वाला है सारे दुनिया को बचाना है सभी यीशु को सभी को प्रचार करना है आप दान दे दो अभी जाओ कौन डालेगा बीज हजार रुपया का बीज कौन डालेगा 50,000 का बीज कौन डालेगा 1,00,000 का बीज। अफ्रीका में बोल रहे थे मैं बोला मेरा वचन 1,00,000 का बीज 50,000 का बीज किधर है वचन खुद ही बनाते तुम वचन किधर है वचन वचन ये नहीं है लेकिन आजकल हो रहा है पास्टर पास्टर बोलते हैं
जो
बोलते हैं बीज डालो बो बो राज्य में बो ये बीज बो और उसके बदले में आप 100 गुना मिलेगा तो डील करता था परमेश्वर से मैं आपको 50,000 दे तुम 5,00,000 दे दो अगले बार मैं तुमको 1,00,000 दूंगा तुम 10,00,000 दे दो तो डील हो रहा है। ये है सुसमाचार। दूसरे सुसमाचार बोलता है हमारा पिता है अपने बच्चे को गरीब रखने को तो मन नहीं है तो तुम्हारा गाड़ी किधर है तुम्हारा घर किधर है। ब्रदर मेरा पर विश्वास नहीं है बेटा विश्वास उबारो मांगो वचन क्या बोलता है मांगो क्या मांगो गाड़ी मांगो घर मांगो अच्छा खा मांगो खुद ही परमेश्वर बोलता है तुमको मांगने के लिए मांगो। देखो कैसे कैसे पलटता है वचन जो वचन जो आत्मिक बातों के लिए है आज क्या बोल रहे हैं असली सुसमाचार क्या है। असली सुसमाचार यह है कि पूरा मनुष्य जाति पाप में फंसे थे पाप और मौत में फंसे थे और ये फंसे हुए मौत पूरा मनुष्य जाति बचने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र मनुष्य बनने के लिए भेजा ताकि वो चुनौती दे दे। इसलिए प्रभु यीशु तुमने आखिरी शब्द क्या बोला ये खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है मनुष्य को बचने का काम खत्म हो गया उद्धार तमाम हो गया ये क्या बोला
तमाम हो गया
मतलब ये पूरा मनुष्य जाति को बचाने का काम चुनौती जीवन के लिए जीवन देना है परिपूर्ण जीवन का आदम का पाप क्या आदम इसलिए मौत का दंड आया और उसके बाद आदम के सारे बचने के ऊपर आया अभी सिर्फ आदम को बचाना है आदम पूर्ण मनुष्य का अभी जीवन को जीवन देना है तो एक और परिपूर्ण मनुष्य आया मनुष्य आना है और वो परिपूर्ण मनुष्य जब आ जाता है और अपना जान देता है आदम के लिए तो आदम का छुटकारा हो गया आदम का छुटकारा हुआ कलवरी में। यह है सुसमाचार। और सुसमाचार में एक और बात है दो उद्धार है एक तो स्वर्ग का उद्धार अभी चल रहा है जो एक मार्ग है जो पहचानता है बहुत कम लेकिन उसके बाद एक और उद्धार आने वाला है सारा दुनिया जिसका नाम है राजमार्ग है। उस राजमार्ग में सारे पापियों जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। ये सारा दुनिया के लिए परमेश्वर रखा है वो उद्धार ये है असली सुसमाचार। लेकिन आज वो सुसमाचार दिखता नहीं है। देखा कैसे शत्रु हर एक शिक्षा के बदले में अपने गलत शिक्षा लाया अपने बीज लाया तो ये हुआ ये तो हो रहा है और इस युग के अंत में हम हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये जंगली दाने के फर्क है ना गेहूं और जंगली दाने का फर्क है मैंने आपको बताया एक तो बताया कि जंगली दाने देखने में गेहूं जैसा लगता है हम शक्ल जानता है ना पहचानने के लिए मुश्किल जानने वाला ही जानता है फर्क क्या है। तो ये असली ही नाम में मसीह ये है हम शक्ल तो असली मसीह ही गेहूं का दाना
और नकली मसीही जंगली दाने का दाना जो काला है, ये इस गेहूं का बीज सोने की जगह सोने का कलर गोल्डन कलर गोल्ड आपको जानता है बाइबल में गोल्ड तंबू में पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान में गोल्ड का मतलब है दिव्य दिव्य परमेश्वर के संबंधित बातें। तो ये गेहूं का रंग है सोने के रंग क्यों, क्योंकि गेहूं अति मसीही को के पास है दिव्य शिक्षा, दिव्य शिक्षा परमेश्वर के पास। लेकिन इनके पास ये रंग क्या है काला, ये काला है असत्य, रोशनी है सत्य काला है असत्य, ये सारी शिक्षा असत्य है इसलिए काला है। और अगर ये गेहूं का दाना खाते हैं इसमें जीवन, लेकिन अगर ये काले दाने खाता है उल्टी मौत होती जहर है। तो इसका मतलब है ये शिक्षा जो शैतान का शिक्षा जो आजकल कलीसिया में चल रहा है, ये नकली शिक्षा जो है ये जब कोई अपलेता है वो उल्टी करता है। उल्टी का मतलब क्या है कि तब करते हैं जब हम कोई खाने की चीज खाते हैं जो हजम नहीं हो सकता है। हम कोई चीज लेता है खाने के लिए पेट के अंदर जाता है हजम नहीं होता पेट बाहर छोड़ बाहर तो उसको उल्टी कहते हैं जो हजम नहीं हो सकता है। तो ये शिक्षा हजम नहीं हो सकता है इसका मतलब इसको सबूत के साथ बताता है परमेश्वर के वचन रख के सबूत के साथ बता नहीं सकता ये हजम नहीं कर सकता है शिक्षा तो इसको उल्टी कहता है। त्रिदेव का शिक्षा पूछ लो हम बैठेंगे वो बताओ क्या क्या की बोलेंगे ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे वचन नहीं बोलते तो ये शिक्षा कैसा होगा हजम नहीं हो सकता हम अपना नहीं सकता है हम ये स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वचन के अधिकार नहीं है वचन के अधिकार नहीं है। दूसरे बात क्या है जब हवा बहता है हवा का मतलब आपको जानते हैं बाइबल में हवा का मतलब है कलेश हवा का मतलब है परीक्षाएं हवा का मतलब है ट्रबल उसको क्या होता है मुश्किलें परेशानियां। तो जब मुश्किलें और परेशानियां आ जाता है गेहूं के खेत में झुकता है झुकने का मतलब क्या है सच्चा मसीह ही जानता है हर एक बात चाहे वो अच्छा या बुरा परमेश्वर के मसीह के बगैर हमारे ऊपर नहीं आ सकता है। जब परमेश्वर के अनुमति से आता है तो हम कौन झगड़ा करने वाले। जब मैं अफ्रीका में थे वहां पर देखा एक जगह में भाइयों एक लड़की के लिए प्रार्थना कर रही बोला ये लड़की बीमार है इसके लिए प्रार्थना करेंगे चलो सभी का ना होते प्रार्थना कर रहे थे मैं थोड़ा दूर था। अगर मैं पूछा भाइयों से तुमने कभी सोचा मैं क्यों दूर था हाँ हम सोचते थे तुम क्यों दूर था क्यों नहीं आया प्रार्थना में। मैंने बोला भाइयों मैं इतने बड़े बड़े सच्चाई आपको बता रहे हैं इतने बड़े सच्चाई है जो कोई सुन नहीं सकता है जो समझ नहीं पाता है और इतना सारा बड़ा रहस्य परमेश्वर तुमको बता रहा है और ये छोटा सा काम परमेश्वर नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर से मांगना है परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर मुझे बीमार बना दिया वो लड़की अब परमेश्वर को परमेश्वर तुमने गलती किया उसको ठीक करवा दो। तुमको इतना ज्ञान है क्या परमेश्वर को बताने के लिए कि परमेश्वर तुम गलती कर रहा है ये लड़की को बीमार करते ही तुम इसको क्या करोगे ठीक कर रहा हम तो नहीं कह सकते। हमको जानना है कि परमेश्वर के मर्जी के अनुसार सब कुछ होता है। हम तो ये प्रार्थना कर सकते परमेश्वर ये लड़की बीमार है हम जानता है तुम्हारा योजना क्या है इनके खानदान मांग रही है इसको ठीक होने के लिए
ये विनती आपके सामने हम रखते हैं। आमीन। बस उतना ही कह सकते हैं। उसको ठीक करवा दो, अभी यीशु के नाम से ठीक करवा दो। क्या है हुक्म देने देते क्या परमेश्वर को? हम परमेश्वर को कोई हुक्म नहीं दे सकते हैं। अगर हम परमेश्वर जानते हैं तो हम ऐसा करें, ऐसा करें। इतना सामर्थ्य वीर दयालु परमेश्वर। तो ये जो हवा जब बहता है ना गेहूं के खेत में, वो झुकता है, इसका मतलब है असली मसीह ही पूरे के पूरे परमेश्वर के मर्जी को झुकेगी। लेकिन ये दूसरे मसीह ही जो खेत, जो जंगली दाने के खेत है, वो खेत में वो हवा में क्या करते हैं, सामना करेगा ऐसा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के इच्छा को नहीं झुकेगा, वो उसके विरुद्ध खड़ेगा। उसको कार्य सब परमेश्वर के इच्छा नहीं समझ के उसके अलग करेंगे, उसके अलग करेंगे। हाँ, तो ये ऐसा ऐसा झुकता नहीं, ऐसा ऐसा। तो ये आजकल हो रहा है, परमेश्वर को हुक्म देता है परमेश्वर नाम से, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको रहा करो, उसको काम दो। वचन बोलता परमेश्वर ही जानता है, तुमने पहले परमेश्वर जानता है तेरा क्या चाहिए, जानता है। अब तुम बोलता परमेश्वर ये करो वो करो। तो आजकल ये तो देख रहे। तो ये है नकली मसीही, ये है जंगली दाने। देखो ये उदाहरण दिया है, जंगली दाने ऐसे ही होगा और नकली मसीही ऐसे ही होगा, दोनों एक ही केस में। आजकल का स्थिति कैसा है, मतलब एक भविष्यवाणी बताते हैं। अभी आप बहुत हैरान हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। यशाया 28वां अध्याय 8वां।
क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल के भय में कोई प्रतिष्ठा नहीं होता।
इसका मतलब क्या है? भोजन आसन का मतलब क्या है? मेज, डाइनिंग टेबल, तुम्हारे घर के भोजन आसन में तुम खाना खाएंगे ना, खाना खाते हैं ना। लेकिन ये वो हमारे घर की खाने का टेबल नहीं है, ये आत्मिक भोजन का आसन, मतलब कलीसिया। वचन बोलता है हरेक भोजन आसन, हरेक कलीसिया कैसे स्थिति में है, उस मेज पर क्या है? वमन और गंदगी। वमन का मतलब क्या है? उल्टी। तो जो शिक्षा और जो उपदेश अभी जो हरेक कलीसिया में बोलते हैं, वो हम वचन के अधिकार के बिना का कलीसियाओं का शिक्षा करते हैं। वचन के अधिकार हो तो हम क्या कर सकते हैं? हजम कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। अगर वचन का अधिकार नहीं है, हम उल्टी ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं सुन सकते हैं। क्यों? इसका वचन किधर है? जब वचन नहीं है तो हम नहीं कर सकता, अंदर नहीं कर सकता, हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? उल्टी। आजकल सारे कलीसिया हरेक मेज के ऊपर वमन, गंदगी। गंदगी का मतलब है दुनियादारी, दुनियादारी के तरीकों, दुनियादारी के सिद्धांतों आजकल हो रहा है। आज भी क्या वाल्मीकि का जन्म है, वाल्मीकि के जन्मदिन को परमेश्वर के कलीसियाओं में बात करते हैं और परमेश्वर के सेवक जा रहे हैं। गंदगी, एक गंदगी। और जो लोग दुनिया तरीके इस्तेमाल करते हैं वो गंदगी है। बहुत सारे कलीसिया आजकल ये एमएलएम भी चल रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सारे मेंबर्स के बीच में। ये हमारा सबके बड़े के लिए हम कर रहे हैं, हरेक को आशीर्वाद होने दे, हम खुद ही खरीद लेंगे, हमारे बीच में ही खरीद लेंगे, हम सब अच्छे रहेंगे। गंदगी, ये सब आत्मिक से जीवन में एक जगह नहीं है। तो यही बात वचन बोलता है, हरेक भोजन आसन आजकल कैसा है?
एक तरफ वमन और दूसरा तरफ ये गंदगी है। साफ सुथरा जगह एक भी नहीं है, मतलब बोलते हैं नहीं। ऐसा ऐसा स्थिति में आज हम जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंत में मतलब और थोड़े दिन में वो ये दृष्टांत के अंतिम बात होने वाला है, वो है कि अंत में मैं कटनी के समय में कटाई वाले को कहेंगे कि पहले जंगली दाने को इकट्ठा करके बांध लो, गुच्छा गुच्छा में बांध लो जलाने के लिए, और हमारे गेहूं गोदाम में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आखिरी न्याय आने वाला है, और उस न्याय आते वक्त आने से ये जो जंगली दाने गुच्छे गुच्छे में बांधेंगे, गुच्छे गुच्छे का मतलब क्या है? बिना में नहीं। जब सवाल पूछते हैं तुम कौन से शख्स, मैं पूछता हूँ तुम क्या सवाल पूछते हैं, तुम कौन से मिशन है, तुम कौन से चर्च है, मैं बोलता हूँ क्या सवाल पूछते हैं? एक ही चर्च है, एक ही मिशन है, तुम क्यों बंटवा रहे हो, तुम क्यों मुंबई को पूछ रहे थे कौन सा चेलो के दिन में आए थे, प्रभु के दिन में आए थे, नहीं थे, एक क्या सवाल है? लेकिन ये है वो गुच्छे, मतलब बंडल 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 को क्या कहते हैं, गुच्छे बराबर। तो ये बंडल बंडल अभी है ना, कितने बंडल है? 1500 बंडल है शायद आजकल, इतने बंडल है, उससे ज्यादा बोला बोला बड़ा 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 के डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन नाम 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 इतने खाली से। तो ये है, ये सारा डिनोमिनेशन है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात करते वक्त हमारा दो ऑटो उधर चिल्ड्रन से लेके गए, अभी तक आज में ये वचन सुनने के लिए भी नहीं आया, सबसे महत्वपूर्ण वचन है। तो ये जलाने के लिए रखेंगे, जलाने का मतलब है न्याय, बड़े भयानक न्याय आने वाला है। ये सारे जो खलीसियाओं को जल जाएंगे, जल जलने का मतलब क्या है? नाश नहीं, मनुष्य का नाश नहीं है, पर ये गलत शिक्षा का नाश और ये गलत विश्वास का सर्वनाश ये होने वाला है, ये होने वाला। इसका और भी जानकारी आने वाले क्लास में देख लेंगे, लेकिन सच्चे गेहूं गोदाम में इकट्ठा करेंगे। गोदाम का मतलब है मसीह का बुलावा, चर्चों का बुलावा, मतलब 1,44,000 के समझदारी के ज्ञान के बुलावा और के रास्ता में उस तरह का नाम है। तो ऐसे ही दूसरे कटाई भी खत्म हो जाएंगे। गेहूं में भी दो किस्म का गेहूं होगा, एक तो पक्का गेहूं, एक तो कच्चा गेहूं। उसी तरीके से हमारे बीच में कुआरियां, बुद्धिशाली कुआरियां, मूर्ख कुआरियां, मतलब हमारा आत्मिक बढ़ोतरी अच्छी तरह से होता है। हमारा आत्मिक बढ़ोतरी में अगर हम पूरे मन नहीं लगाते हैं तो थोड़े मन किधर जाएगा? दुनिया। हमारा जरूरत है, परमेश्वर जानता है हमारे लिए जरूरतें हैं मनुष्य रहने के नाते, लेकिन वो भी परमेश्वर के ऊपर रखेंगे ना। परमेश्वर जो मर्जी है वो चलाएंगे ना। हमारा एक ही मकसद है, जैसे पाउल बोलता है मेरे को एक ही चाहता है, एक ही कि मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, एक ही, बाकी सब भूल जाए। भूलने का मतलब क्या है? बाद में दिल में नहीं ले रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रहा है दिल में नहीं ले रहा है, जो स्पोर्ट्स हो रहा है दिल में नहीं ले रहा है, जो खानदानी बात हो रहा है दिल ले रहा है। सुनते हैं इस तरह से सुनते हैं, उसको छोड़ रहे। मैं सिर्फ एक ही बात ध्यान देते हैं, वो है परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के लोग के बीच में संगठन। तो ये है पक्के दाने, और हमारे बीच में वो कच्चे दाने भी होंगे, मतलब एक तो छोटे झुंड और दूसरे तो बड़े भीड़ बन जाने के बाद में। तीसरे कटाई अभी आ चुके हैं, अगले बार मिलते वक्त आप तीसरे कटाई आप सुन लेंगे। तीसरे कटाई में खेत पूरा दुनिया सारा दुनिया लोग को के बीच में परमेश्वर काम करेंगे। पहला कटाई के जो भूसा इधर आएगा, दूसरा कथा है कि गंदी दाने इधर आएगा, सभी जीव उठ के वहां आएंगे। यहां आखिरी कटाई होगा और इस आखिरी कटाई में बंटवारा बकरियों से भेड़ों से। मसीह 25वां अध्याय है तो वो बात अगले हफ्ते परमेश्वर चलाएंगे। आज के मौके पर परमेश्वर जो दिया इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। परमेश्वर के नाम से आप सब पर आशीर्वाद रहे। आमीन।